Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 4, presented by Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Lekin पता नहीं किसके चलते उसको तुम नहीं पहचान रहे हो, दर्शन के लिए तरस रहे हो। ये होता है। कमरा एक ही है, उस एक ही कमरे में भी बीच में एक पर्दा लगा दिया जाए तो एक दूसरे को नहीं देख पाएगा, है ना? कमरा एक होने मात्र से एक दूसरे को देख लेगा ये बात नहीं है। बीच में यदि पर्दा होगी तो एक दूसरे को कैसे देखेंगे? उस हृदय में पर्दा क्या है भाई, जहां तुम रह रहे हो और जहां तुम्हारे परमात्मा रह रहा है, फिर भी तुम उसको नहीं देख पा रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पर्दा है, कोई न कोई पर्दा है बीच में। अब वो पर्दा किस बात की है? तो वही महात्मा लोग बोलते हैं, वही अविद्या का पर्दा है, अज्ञान का पर्दा है। और ये पर्दे की विशेषता है, एक तरफ से दूसरी तरफ तो दिखता है, दूसरी तरफ से एक तरफ नहीं दिखता, ये इसकी विशेषता है। आपके एयर कंडीशन ट्रेनों में होता है ये सब चीज। हम एक बार जो है पहली बार एसी ट्रेन में किसी को छोड़ने के लिए गए, कई महात्मा जी थे उनको छोड़ने के लिए गए राजधानी में। महात्मा तो अंदर चले गए अपनी सीट में बैठे, और जब ट्रेन चलने की तैयारी होने लगी हम बाहर से हाथ हिला रहे हैं, वो देख ही नहीं रहे, वो हमको देख रहे हैं और हम उनको नहीं देख रहे, वो भी हिला रहे हैं हम नहीं देख रहे हैं। ऐसा होता है ना ट्रेन में, एयरकंडीशन ट्रेन के वो डब्बों में बाहर से अंदर नहीं दिखता लेकिन अंदर से बाहर सब दिखता है। तो पर्दा भी ऐसा पर्दा है कि अंदर से बाहर दिखता है, राजधानी ट्रेन के जो है एयर कंडीशन के डब्बे की तरह, और बाहर से अंदर दिखता नहीं है। वो हृदयाकाश में ऐसा अविद्या का पर्दा है कि परमात्मा आपको यानी उस जीवात्मा को, भोक्ता को पूरी तरह देखता है, लेकिन भोक्ता जीव उसी के कमरे में रहने वाले उस परमात्मा को देखता नहीं, उसको दिखाई नहीं पड़ता है। वो पर्दे की विशेषता है। दाव सुपर्ण सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिस्वस्व जाते तयो अन्यः पिप्पलं स्वादुवत्ती। ये दो पक्षियों में से, यहां पक्षी का रूपक दिया, हमने कल इसकी व्याख्या की थी। सुपर्णा, सयुजा, सखा, तीन पदों की व्याख्या हमने कल की है। सुपर्ण माने दोनों बहुत सुंदर हैं, सुंदर होने में हेतु हमने कल बताया था। अधिष्ठान का रूप रंग जैसा है, अध्यस्त का रूप रंग भी वैसा ही होता है। रस्सी का रूप रंग यदि सुंदर है तो सर्प का रूप रंग भी सुंदर ही होगा। रस्सी मोटी है तो सर्प मोटा, रस्सी पतली है तो सर्प पतला, रस्सी लाल है तो सर्प लाल, रस्सी सफेद है तो सर्प सफेद। तो अब यदि रस्सी सुंदर हो सकता है तो सर्प असुंदर होगा, इसलिए अधिष्ठान जैसा होता है अध्यस्त वैसे होता है। इसलिए कहा द्वौ सुपर्ण, दोनों ही सुंदर हैं। आप यदि आभूषण आदि बढ़िया साड़ी बढ़िया मेकअप करके आभूषण लगाकर आप बड़े सुंदर होकर मिरर के आगे खड़े हों तो आप सुंदर हैं, तो मिरर के अंदर दिखने वाला दृश्य भी तो सुंदर ही होगा, है? होगा कि नहीं? आप सुंदर हैं तो मिरर के अंदर दिखने वाला दृश्य भी सुंदर होगा। आप जैसे हैं वैसे ही ना वो दिखने वाला है। ये कहां के नियम है कि आप बिंब सुंदर हो और प्रतिबिंब सुंदर हो? कभी कभी ऐसा होता है, बिंब बड़ा सुंदर है, लेकिन जिनमें प्रतिबिंब पड़ रहा है वो यदि दूषित है, उपाधि यदि दूषित है, पानी गदला है, तो आप चाहे कितने सुंदर हो जाओ, वह उस पानी में पड़ा हुआ प्रतिबिंब गंदा ही दिखेगा, ऐसा भी होता है। बिंब प्रतिबिंबवाद में ये हो सकता है, लेकिन विवर्तवाद में ऐसा नहीं हो सकता है। बिंब प्रतिबिंबवाद में बिंब सुंदर होने पर भी प्रतिबिंब असुंदर हो सकता है, क्योंकि प्रतिबिंब जिसमें पड़ रहा है उसके विकार के सहित प्रतिबिंब दिखेगा, बिंब में वो चीज नहीं है। उपाधि का विकार धर्म प्रतिबिंब से जुड़ सकता है, बिंब से नहीं जुड़ता है, इसलिए बिंब बड़ा सुंदर और प्रतिबिंब असुंदर हो सकता है बिंब प्रतिबिंब बाद में, परंतु विवर्तवाद में ये भी संभव नहीं है। विवर्तवाद में तो अधिष्ठान जैसा होगा विवर्तित वैसा ही होगा, विवर्तवाद में तो बीच में कोई उपाधि है ही नहीं, विवर्तवाद में तो तुम्हारी ही दृष्टि है। तो सयुजा सखा या सखा शब्द का भी हमने व्याख्या की थी। सखा शब्द का अर्थ होता है एक साथ प्रतीत होना, एक साथ रहना, एक साथ प्रतीत होना, एक के ज्ञान से दूसरे का निश्चय होना, इसका अर्थ होता है सखा। और ये बात तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 15वें अध्याय में कह दी है, उसके साथ इसका मिलाकर इसका अर्थ निश्चय कर लो। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानं वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। हे अर्जुन, जीवात्मा जब इस शरीर में रहता है और जिस दिन इस शरीर से उत्क्रमण करता है, उत्क्रामंतम उदान वायु के चलते इस शरीर से जब जीवात्मा उत्क्रमण करता है, आपके सहित आपके सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को, ध्यान से सुन लेना, आपके सहित आपके सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को इस स्थूल शरीर अन्नमय कोष से बाहर निकालने का महत्वपूर्ण वस्तु है उदान वायु। हमने कई बार आपको व्याख्या में कहा है, उसका नाम उदान रखा ही इसलिए क्योंकि ऊर्ध्वम उन्नयति इति उदान। इस शरीर से उत्क्रमण कराने के कारण उसका नाम है उदान। उदान वायु के चलते आपके ये समस्त सूक्ष्म शरीर, उस सूक्ष्म शरीर में प्रतिबिंबित चिदाभास और उस चिदाभास के साथ में रहने वाला कूटस्थ, ये सब उत्क्रमण करते हैं। गीता के श्लोक से तो ये भी सिद्ध हुआ है, चिदाभास यदि उत्क्रमण करता है, जीवात्मा यदि सूक्ष्म शरीर के माध्यम से उत्क्रमण करता है, तो परमात्मा भी उत्क्रमण करता है, कूटस्थ भी उत्क्रमण करता है। ये श्लोक से यही सिद्ध हो रहा है। यूं तो वेदांत की प्रक्रिया यह है कि कूटस्थ में कोई क्रिया नहीं होती, वेदांत की प्रक्रिया तो यह है, कूटस्थ हमेशा निष्क्रिय निर्विकार रहता है और उपाधि के चलते सारी क्रियाएं और सारे विकार चिदाभास में हैं। उपाधि के चलते सारे विकार और क्रियाएं ये चिदाभास में है, कूटस्थ निष्क्रिय है निर्विकार है, ये वेदांत की प्रक्रिया है। फिर भी गीता के श्लोक के आधार पर तो यही सिद्ध होता है कि चिदाभास उपाधि के उत्क्रमण से चिदाभास उत्क्रमण करता है तो कूटस्थ भी उत्क्रमण करता है। उत्क्रामंतम, जिस समय जीवात्मा एक स्थूल शरीर से उत्क्रमण करता है, स्थितम वापी, कालांतर में उसके अविद्या काम कर्म के चलते अन्य उपाधि और स्थूल शरीर आदि को वह प्राप्त करके उस शरीर में घुसता है। चिदाभास सूक्ष्म शरीर के सहित चिदाभास किसी अन्य शरीर में घुसता है और उस शरीर में घुसकर भुंजानम वा अपने अपने कर्म के अनुसार वो कर्म फलों को भोगता है। जिस समय जैसे कि आप इस शरीर में घुसकर आप अपने अपने कर्म फलों को भोग रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि जो कर्म फल आप भोग रहे हैं वो मैं भोगूं, ये जरूरी नहीं कि जो कर्म फल मैं भोग रहा हूं वो आप भी भोगो। आपके भोग में और मेरे भोग में अंतर है। मैं संसार को भोगता हूं अपने ही ढंग से भोगता हूं, आप संसार को भोगते हैं अपने ही ढंग से भोगते हैं। ये कि संसार को दो आदमी भोग रहा है तो ये दो प्रकार के भोग की प्रक्रिया कहां से आ गया, किस कारण से आ गया, तो बताया जाता है कि जिसका जैसा कर्म होगा वह उसी तरह उसको भोगेगा। आप भी आम खाते हैं, हम भी आम खाते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते हैं भगवान जाने, कहने में क्या अर्ज है। आप तो आप भी खाते हैं और हम भी खाते हैं। हम उस आम को काटकर पीस बनाकर खाएंगे, आप उस आम को निचोड़कर रस बनाकर खाएंगे। अंतर हो गया कि नहीं भोगने की प्रक्रिया है? भोगने की प्रक्रिया में अंतर हो गया कि नहीं? हम उस आम को खाते हैं तो कुछ नहीं, आप रस बनाते हैं, घी डालते हैं, सूंठ डालते हैं, नमक डालते हैं, अब पूरी के साथ खाते हैं और हम सीधे खा जाते हैं उसको। अंतर है, हम अपने ढंग से खाएंगे, आप अपने ढंग से खाओगे। हम निचोड़ नचड़ के कभी आम के रस खाना भी पड़े तो निचोड़ नचड़ के रस रस खा लेंगे और छिलके फेंक देंगे, आप छिलके का फजीता भी कर लेंगे। आप उसको फजीते भी बनाकर खा लोगे, हम फजीता बनाकर नहीं खाएंगे। क्या मैं फजीता बनाकर खाऊंगा, आप फजीता बनाकर नहीं खाओगे। भोगने का अपना अपना ढंग है, भोग्य एक ही है, लेकिन भोक्ता पदार्थ भोग्य वस्तु एक है, लेकिन भोक्ता अलग अलग होने के कारण उसके भोगने की ढंग अलग अलग है, अलग अलग प्रक्रिया से वह भोगता है। भुंजानम वा, गीता के 15वें अध्याय में उत्क्रामणतम स्थितम वापि भुंजानम वा, आप इस शरीर में प्रवेश करके अपने अपने ढंग से अपने कर्म अपनी वासना सुबह शुभ रूप से इस संसार को आप किस तरह भोग रहे हो, जिस तरह भोग रहे हो, भोग रहे हो इस भोग काल में भी, हे अर्जुन मैं उसके साथ रहता हूं, ये उसकी विशेषता है। ऐसा नहीं कि उसने इस शरीर को छोड़ दिया तो मैं शरीर में रह गया और वो अकेले सूक्ष्म शरीर में बाहर निकल के गया, ऐसा नहीं। वो निकला तो मैं भी निकला, मैं निकला तो वो भी निकला, यही तो सखा की विशेषता है। और यहां तक कि कुछ लोगों को जब ये बात समझ में नहीं आती है तो प्रश्न करते हैं, ये परमात्मा कैसा परमात्मा है कि अपने ही अंशरूप जीवात्मा को उसके नसीब पर उसके कर्मों पर छोड़ देता है और बेचारा वह दुखी होता है, पीड़ित होता है, कष्ट में पड़ा हुआ है और वो चुपचाप देख रहा है, ये उसके कैसी सखापना है भाई, क्यों नहीं देखता है वो, ऐसे प्रश्न करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उसके साथ ही रहता हूं। जिस समय वो मर के निकलता है उस समय मैं भी निकलता हूं, जिस समय वह आतिवाहिक शरीर में लोक लोकांतर का भ्रमण करता है उस समय मैं भी उसके साथ ही भ्रमण करता हूं, जिस समय वह अपने प्रारब्ध के चलते अन्य शरीरों में वह प्रवेश करता है उस समय मैं भी प्रवेश करता हूं, तत्त्व शरीरों में रहकर शरीर के अनुकूल प्रारब्ध के अनुकूल भोग्य पदार्थों को जिस समय वह भोगता है उस समय भी मैं उसी के साथ रहता हूँ। ऐसा नहीं समझना अर्जुन कि कोई जीवात्मा पहले मनुष्य था, ब्राह्मण था, और वो किसी वासना के चलते वह मर गया, और उस वासना के चलते कालांतर में उसको सुअर की शरीर प्राप्त हो गया और उस बिस्टा खाने लगा, तो इसको मुझे इसके साथ नहीं रहना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। बात समझ गए कि नहीं? जिस समय वह जीवात्मा इस शरीर से निकला, अपने कर्म के अनुसार मधुमक्खी में प्रवेश कर गया, वहां पर भी मैं साथ में रहा, और वो जो मधुमक्खी के द्वारा वह जीवात्मा जब फूलों के मधुर रस को पान कर रहा था, तो उस समय भी मैं उसी के साथ था, और कोई दूसरा जीवात्मा निकला और वासनाओं के चलते गोबर के कीड़े में वह घुस गया, वह गोबरेला हो गया, और उस गोबर के कीड़े में घुसकर वह गोबर को खा रहा है, तो उस समय मैं उसके साथ नहीं रहता हूं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वह नहीं रहेगा तो वह गोबर का कीड़ा गोबर नहीं खा पाएगा, वह नहीं रहेगा तो वह मधुमक्खी पुष्पों से वह मधु नहीं खा पाएगा, वही नहीं रहेगा तो कोई गुजराती श्रीखंड पूड़ी नहीं खा पाएगा, वो नहीं रहेगा तो कोई मराठी पूरणपुरी नहीं खा पाएगा, और वो नहीं रहेगा तो कोई भी भुंड बिस्टा नहीं खा पाएगा। उसकी विशेषता यह है, वो चाहे जहां भी रहे, जैसे भी उपाधि में रहे, वो भोक्ता नहीं है, इसलिए उसको कोई समस्या नहीं है। वो भोक्ता होता तब पुष्पों के मधु और गंदगी में अंतर होता, वो भोक्ता नहीं है, तो उसके लिए हीन उपाधि और उत्तम उपाधि, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भोक्ता होता है उसके लिए फर्क पड़ेगा, उत्तम उपाधि में रहकर उत्तम वस्तु को भोगेगा, और वही व्यक्ति यदि हीन उपाधि में जाकर हीन वस्तु को भोगना पड़ेगा तो उसको पीड़ा होगी, उसको व्यथा होगी, उसको कष्ट होगा। कष्ट किसको होता है? जो उत्तम उपाधि में रहकर उत्तम पदार्थ को भोक्ता बनता है, उसी को जब किन्हीं कारणों से हीन उपाधि में रहकर हीन पदार्थों को भोगना पड़ता है तब उसको व्यथा होती है, उसको पीड़ा होता है। लेकिन जो उत्तम उपाधि में रहकर भी उत्तम पदार्थों को भोगता नहीं है, तो हीन उपाधि में रहकर भी हीन पदार्थों को उससे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो भोगता नहीं है, इसलिए उसको पीड़ा नहीं होगी। जैसे उत्तम उपाधि में रहकर उत्तम पदार्थ को भोगता नहीं इसलिए प्रसन्नता नहीं, हीन उपाधि में रहकर हीन पदार्थों को भोगता नहीं है इसलिए उसको कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसकी ये विशेषता है कि वह सखा है, तुम उत्तम उपाधि में रहोगे तो भी वो भी उत्तम में ही रहेगा, और हीन उपाधि में जाओगे तो भी हीन उपाधि में रहेगा। बात समझ गए? इसीलिए खूब धन संपत्ति जिस समय हुआ, सब वैभव है, उस समय बड़े दोस्त बड़े मित्र हो गए, और जब धन संपत्ति सब खत्म हो गया तो सब मित्रों ने साथ छोड़ दिया। ठीक है, संसार के मित्र साथ छोड़ सकते हैं, वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता। ये बात को ये 15वें अध्याय के इस श्लोक से स्पष्ट किया है। लेकिन परमात्मा को एक ही दुखी है, परमात्मा यदि दुखी है तो एक ही बात को लेकर दुखी है, वह आपके लिए इतना करता है फिर भी आप उसको एक बार देखकर, अरे मित्र धन्यवाद इतना कर दो ना भाई, क्या जाता है, एक बार उसको देख लो, पहचान लो, और उसको एक बार धन्यवाद थैंक्स कह दो, क्या फर्क पड़ता है। उसको इतना ही दुख है कि वह इतना भी नहीं करता है, मैं इतना करता हूं वो इतना भी नहीं करता है। अब आप प्रश्न करोगे, मोहिनी फिर प्रश्न करेगा, क्या वो अपेक्षा रखेगा वो है? मुझे धन्यवाद देवे या अपेक्षा रखेगा वो, इसी के लिए उसके पीछे लगा है क्या? मुझे धन्यवाद दे थैंक्स कहेगा इसके लिए वो पीछे लगा हुआ है, तो हमसे भी ज्यादा स्वार्थी है वो है, हमसे भी ज्यादा स्वार्थी हो गया कि नहीं, बोलो। इतनी के लिए सब कर रहा है तो निष्प्रयोजन तो नहीं कर रहा है, प्रयोजन के साथ कह रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं। उसको एक प्रसन्नता ये होती है कि उसने अब मुझे पहचान लिया, देख लिया है, तब अब इसका उद्धार हो जाएगा, इसके शुभ कर्म जग गए, इसका अब उद्धार हो जाएगा, ये अब दोबारे बुरे मुसीबत में नहीं फंसेगा, क्योंकि अब उसने देख लिया है, देख लिया है तो वो जहां भी रहेगा आनंद में रहेगा। इस आशय से वो ये अपेक्षा रख रहा है। अरे भाई, कभी न कभी तो ये एक बार आंख खोलेगा, कभी न कभी, आज नहीं तो कल, इस जन्म में दूसरे जन्म, इसलिए वो हर जन्म में तुम्हारे पीछे घुमा हुआ है, अनादि से आज तक काल प्रवाह से तुमको साथ नहीं छोड़ रहा है, मैं हमेशा इसके साथ में रहूंगा, तो कभी न कभी वह मुझे एक बार देख लेगा, पहचान लेगा, और एक बार देखना ही उसके लिए पर्याप्त है। ये बात तो कुंती ने भागवत में कह दिया है ना, विपदा संतुना शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शन। हे जगत गुरु, हमें हर जगह हर समय विपत्ति की प्राप्ति हो, मुसीबत की प्राप्ति हो, कष्ट की प्राप्ति हो, और जब हम मुसीबत में फंसते हैं, कष्ट में फंसते हैं, विपत्ति में फंस जाते हैं, तब हमने आपको स्मरण किया है और हम आपका स्मरण करते हैं, और जब आपका स्मरण करते हैं तो आपका दर्शन भी हो जाता है। भवतो दर्शनम, आपका जो दर्शन होता है वो आपका दर्शन आपके दर्शन के लिए नहीं होता, अपुनर्भव दर्शन संसार के अदर्शन में कारण होता है। आपके दर्शन आपके दर्शन में कारण नहीं बनता है। देखो इस श्लोक की व्याख्या तुम इस तरह कर लेना, वैष्णव लोग जिस तरह करते हो करो, हम अपनी तरफ से करेंगे। भवतो दर्शनम यत्स्यात्, आपका दर्शन आपके दर्शन के लिए नहीं है, आपके दर्शन की विशेषता यह है कि अपुनर्भव दर्शनम संसार के अदर्शन में कारण होता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके दर्शन से मोक्ष होता है, इसके कहने की अपेक्षा संसार के अदर्शन से मोक्ष होता है। आपका दर्शन भी हो और संसार का दर्शन भी हो तो कोई मुक्त होगा क्या है? संसार का दर्शन भी हो और आपका दर्शन भी हो, एक साथ होगा क्या? ये श्लोक ही कह रहा है, आपका दर्शन होगा तो संसार का अदर्शन होगा। संसार का अदर्शन होने का अभिप्राय यह है कि संसार की प्राप्ति होगी ही नहीं। संसार की प्राप्ति होवे तब न दर्शन होगा, तो संसार का अदर्शन ही आपका दर्शन है, आपका दर्शन ही संसार के अदर्शन है। आप और संसार ये दोनों एक साथ तो हो ही नहीं सकते भाई, आपको भी देखें इधर और संसार को भी देखें है? आप घर में हो, आपकी सेवा पूजा भी करते रहें, आपके दर्शन भी करें, आपके सान्निध्य का आनंद भी लेवें, और संसार में दुखी होकर रोते भी रहें है? और आके फिर आपके पास कहें कि महाराज संसारियों ने मुझे कष्ट दिया, और आकर आपको कहें फिर जाके संसार में, अरे ये दोनों एक साथ नहीं होंगे भाई। भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर, परमात्मा इस आशय से जीवात्मा को नहीं छोड़ता ताकि कभी न कभी एक बार मुझे देख लेगा, तो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर भव दर्शनम, उसको फिर दोबारे संसार का अदर्शन होगा, यानी संसार की प्राप्ति नहीं होगी। एक दिन न एक दिन इसको संसार के बंधन से छुटाना है, अब वो काम मुझे ही करनी है, और जब तक ये मेरे को नहीं देखेगा तब तक मुझे इसको छोड़ना नहीं है। पुलिस वाले जब तक अपराध कबूल नहीं करता है तब तक पीटना नहीं छोड़ते है ना, जब तक वो अपराध कबूल नहीं करता। हाँ, उसने ना किया भी हो अपराध, यदि वह कह देता है कि हाँ मैंने किया है, तो फिर पीटना छोड़ देंगे उसको। जब तक वो अपराध कबूल नहीं करता है तब तक पीटना नहीं छोड़ते। इसी तरह परमात्मा, जब तक तुम उसको एक बार नहीं देख लोगे तब तक वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता है। तुम्हारे उसको देख लेने के बाद फिर तुम अलग वो अलग न रहने के कारण उसके सखा भाव बनने की जरूरत नहीं, फिर ये सख्य भाव समाप्त हो जाता है। हाँ, ये वेदांत का रहस्य है। वैष्णव जो अर्थ करता है करे, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने के बाद फिर सख्य भाव समाप्त, क्योंकि द्वैत में ही सख्य भाव संभव है। साक्षात्कार कर लेने के बाद द्वैत भाव संभव नहीं, द्वैत भाव संभव नहीं तो सख्य भाव कहां से आएगा भाई? हाँ, भाव जो कुछ भी हो वो दो में रहता है, एक में भाव नहीं रहता। संबंध जो कुछ भी हो वो सब दो में संबंध रहते हैं, एक में संबंध नहीं रहता है, तब उसका दर्शन ही आपका विसर्जन है। वेदांत है ये, उस परमात्मा का दर्शन ही आपका विसर्जन है, क्योंकि उसके दर्शन से अविद्या बाधित हो जाएगा, अविद्या बाध होते ही उपाधि बाध हो जाएगा, उपाधि बाध हो गया तो जिन उपाधि के चलते तुम अलग प्रतीत हो रहे थे वो उपाधि बाध हो गया तो फिर तुम्हारा अलग अस्तित्व कहां से रहेगा? तुम्हारा अलग अस्तित्व न होना उपाधि का बाध है। इसलिए द्वैत का आदर्शन है, परमात्मा का दर्शन द्वैत का आदर्शन। परमात्मा का दर्शन इस तरह नहीं है कि जिस तरह आप मेरे इसको देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, इस तरह परमात्मा का दर्शन नहीं है। परमात्मा का दर्शन इस तरह दर्शन है जैसे आप इस शरीर में, मैं इस शरीर में हूं, यह दर्शन हो रहा है कि नहीं आपको? है? आपको अपने शरीर में, मैं इस शरीर में हूं, यह दर्शन हो रहा है कि नहीं? आप अपना दर्शन कैसे कर रहे हो बोलो? है? आप अपना दर्शन कैसे कर रहे हो? क्या आपको अपना भी दर्शन नहीं हो रहा है क्या? बोलो, आपको अपना भी दर्शन नहीं हो रहा है क्या? यदि आपको अपना भी दर्शन नहीं हो रहा है तो तीन काल में परमात्मा का दर्शन करने की आशा छोड़ देना भाई। तुमको जब अपना ही दर्शन नहीं हो रहा है तो परमात्मा दर्शन होगा तुम्हें? हा? बोलो, इसका मतलब अपना दर्शन तो हो रहा है ना? अपना दर्शन कैसे हो रहा है मुझे बताओ पहले, अपरोक्ष है तो परमात्मा का दर्शन कैसे चाहोगे? अपना दर्शन अपरोक्ष और परमात्मा का दर्शन प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष तुम्हें, परमात्मा का दर्शन भी अपरोक्ष होगा, क्योंकि जैसा तुम्हारा स्वरूप है वैसे परमात्मा का स्वरूप है। तुम जब तुम्हारा ही दर्शन प्रत्यक्ष नहीं होता है, अपरोक्ष करना पड़ता है, तुम्हें अपना ही दर्शन जब अपरोक्ष करना पड़ता है तो परमात्मा का दर्शन प्रत्यक्ष कर पाओगे? ओम पूर्णमद पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।